नमस्कार, आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड का स्पेशल पॉडकास्ट।
कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ये वेरिएंट दुनिया के 91 देशों में फैल चुका है। WHO के मुताबिक साउथ अफ्रीका और यूरोप में ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। ब्रिटेन में एक दिन में ही 88,000 से ज्यादा मामले आए हैं, जो एक दिन पहले आए मामलों से 10,000 ज्यादा हैं। हालांकि भारत में पिछले 20 दिनों में कोविड के नए मामलों की संख्या 10,000 से नीचे ही आ रही है, लेकिन अकेले ओमिक्रॉन वेरिएंट के 100 से ज्यादा केस 11 राज्यों से सामने आ चुके हैं। इसलिए सरकार ने लोगों को हिदायत दी है कि वे बेवजह यात्रा ना करें और मास गैदरिंग से बचें। लेकिन इससे निपटने की सरकार की क्या तैयारी है, ये जानने के लिए बात करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स की वरिष्ठ पत्रकार निधि शर्मा से। निधि जी, स्वास्थ्य मंत्रालय तो लोगों को आगाह कर रहा है कि वे लापरवाही ना बरतें, सावधान रहें, लेकिन सरकार के स्तर पर इस नए वेरिएंट की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं?
अक्षय जी, जिस तरीके से पहली वेव और दूसरी वेव की जो हमारी सीख रही है, उसी के हिसाब से जो केंद्र सरकार है उसने फिर से कहा है राज्यों को कि हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और बहुत ही ज्यादा वैक्सीनेशन का पेस हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके अंदर वैक्सीनेशन जो है वो सेकेंड डोजेस जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेंगी, क्योंकि काफी कुछ 85% से ज्यादा फर्स्ट डोज कंप्लीट हो चुकी हैं। दूसरी तरफ है ऑक्सीजन का मामला, जिसके अंदर केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट में ये वादा किया था कि एक PSA प्लांट लगाएंगे, जो कि लगभग काम पूरा हो गया है। जहां पे PSA प्लांट्स नहीं एस्टैब्लिश हो सकते हैं, जहां पे ये नहीं दिए जा सकते हैं, वहां पे सिलेंडर्स का पूर्ण तरह पहुंचा दिया गया है। लोगों की ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि PSA प्लांट्स, वेंटिलेटर्स, जिन जिन चीजों की जरूरत आई थी और कमी महसूस हुई थी पहली और दूसरी वेव में, वो सब अभी पूरा किया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी जो हमारे सामने समस्या है वो ये है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसे कहते हैं CAB, जो हमारी सरकार हमें बार बार बोलती जाती है कि मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका सबसे बड़ी चिंताजनक बात ये है कि उसका जो यूजेज है वो बहुत कम हो गया है। जैसे कि यूजेज पहली वेव के बाद जब केसेस बहुत कम हो गए थे जनवरी में, जितना कम यूजेज तब था उस स्तर पे हमारा यूजेज हो गया है। वो दिल्ली में, राजधानियों में, शहरों में अगर यूज करते हुए लोग नजर आते हैं, वो तो नजर आते हैं, लेकिन बाकी छोटे शहरों में कहीं पे कोई भी मास्क का यूज नहीं हो रहा है।
जी, ये बात आपकी सही है कि लोग लापरवाह तो होते जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ सरकार कह रही है कि भीड़ भाड़ से बचें, गैर जरूरी यात्रा ना करें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगभग सभी चीजें खुल चुकी हैं और अब तो स्कूल तक खोले जा रहे हैं, तो लोगों को नए वेरिएंट की गंभीरता का एहसास कैसे होगा?
देखिए, जो नया वेरिएंट है वो उसके बारे में, ओमिक्रॉन के बारे में ज्यादा पता नहीं लगा है अभी तक। जो जो हमारे पास बातें आई हैं सामने, जो रिसर्च हुई है, वो बहुत ही कम स्तर पे हुए, उसका सैंपल साइज बहुत कम है। ये एक बात निश्चित रूप से सबको पता है, निश्चित रूप से, कि ये बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, यानी ये बहुत जल्दी फैल रहा है। साउथ अफ्रीका पहला देश था जिसने ये एक्नॉलेज किया, जो हमारे सामने ओमिक्रॉन को लेके आया। बाकी देशों में जिस तरीके से ये फैल रहा है, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी एटलीस्ट 10-50% ज्यादा है डेल्टा वेरिएंट से, तो इतना तो हमें पता है। तो यही बात बार बार सरकार भी कह रही है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय की, उसमें डॉक्टर वीके पॉल जो हमारे नीति आयोग के मेंबर हेल्थ हैं, उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जिस तरीके से ये यूके में फैल रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट, अगर उसको एक्सट्रापोलेट किया जाए और वैसी ही स्थिति भारत के सामने आती है तो हम लोग 14 लाख पर डे केसेस रिपोर्ट करेंगे। अगर आपको ध्यान होगा दूसरी वेव में हमारी जो पीक थी वो 4 लाख से थोड़ी सी ऊपर थी, जिसमें हमारी जो स्वास्थ्य की जो सारी की सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिल्कुल चरमरा गया था। तो 14 लाख बहुत ज्यादा केसेस हैं। तो ये गंभीरता जो केंद्र सरकार है बार बार दिखा तो रही है, बता रही है लोगों को, लेकिन ये बार बार ये भी बोल रही है कि जो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि मास्क आप जरूर पहने। तो अपनी तरफ से तो सरकार ये दर्शा रही है कि ये बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, आप अननेसेसरीली ट्रैवल ना कीजिए, शादियों का सीजन है थोड़ा सा दूर रहिए, मतलब अपने जो जो एसेंशियल चीजें हैं वो कीजिए, उससे ज्यादा ना कीजिए
जी।
लेकिन
दरअसल ओमिक्रॉन को लेकर एक कंफ्यूजन भी बना हुआ है। कभी आता है कि ये खतरनाक स्थिति ला सकता है, कभी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि संक्रमित लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत नहीं आएगी, इस वजह से शायद लोग थोड़े से बेपरवाह हों। ब्रिटेन में जो 80,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, उनकी स्थिति किस तरह की बताई जा रही है? क्या वो बेहद गंभीर स्थिति है या जल्द ही ठीक हो जा रहे हैं, और क्या हमारे यहाँ भी इतने केसेस बढ़ सकते हैं? जनवरी में तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी।
जो अभी तक डॉक्टर्स साउथ अफ्रीका में, यूके में, फ्रांस में, जहां जहां बढ़ रहे हैं केसेस, वो जो बता रहे हैं काफी जगह ऐसे, साउथ अफ्रीका में तो वेरिएंट जब सामने आया था तो एटलीस्ट 60% ऐसे लोग थे जो अस्पताल गए थे किसी और चीज के इलाज के लिए, लेकिन जो उनको जब टेस्ट किया तो ये सामने आया कि उनको कोरोना है, यानी कि बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स थे। अब ये भी बात गौरतलब ये है कि साउथ अफ्रीका में और काफी ज्यादा अफ्रीकन जो हमारे देश है उनमें वैक्सीनेशन की जो कवरेज है वो काफी कम रही है। तो ये वेरिएंट इनफैक्ट साइंटिस्ट ये कहते हैं ये सामने ही आया है क्योंकि जो वैक्सीनेशन की कवरेज है वो कम रही है और वायरस को मौका मिला है ये अपने आप को एक नए रूप में दर्शाने का। तो ये जो यूके में और फ्रांस में भी जो केसेस आ रहे हैं वो काफी कुछ माइल्ड है। इसका ये भी कारण हो सकता है कि जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन कवरेज इन दोनों ही देशों में काफी ज्यादा है, तो इसलिए भी हो सकता है कि माइल्ड रूप में सामने इसलिए आ रहा है कि लोग वैक्सीनेटेड हैं और काफी हद तक प्रोटेक्टेड भी हैं। लेकिन यूके ने अपनी पहली डेथ पिछले हफ्ते रिपोर्ट की थी, तो ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोमॉर्बिडिटीज हैं और थोड़ी सी एज ज्यादा है या कोई और तकलीफें हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने कहा तीसरी लहर की क्या स्थिति रहेगी, वो हमें देखना ही पड़ेगा क्योंकि ये हम लोग में से कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अभी तक जो सरकार ने बोला था कि केसेस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही एक नया वायरस का नया वेरिएंट आता है तो स्थिति पूरी चेंज हो जाती है।
हालांकि शुरू में आया था कि वैक्सीन भी इस पर कारगर नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार बूस्टर डोज के बारे में क्या सोच रही है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में ये लगने लगे हैं। हमारे यहाँ जिनकी सेकेंड डोज को 6 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, क्या उन्हें बूस्टर डोज देनी शुरू नहीं करनी चाहिए? और दूसरी बात, बच्चों का टीका, उसके बारे में बहुत समय से बातें कही जा रही हैं लेकिन वो लगातार डिले होता जा रहा है।
सबसे पहली बात बूस्टर डोज की, बूस्टर डोज की अभी तक जो हमारी जो मेन बॉडी है एंटागी जिसको कहते हैं, और ये अभी तक डिस्कशंस कर रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हेल्थ वर्कर्स को जनवरी में टीका लगा था, जिन हेल्थ वर्कर्स को पहला टीका, उनको ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। और मतलब जब तक ये निर्णय लेगी सरकार, पूरा एक साल हो जाएगा।
बिल्कुल
ये शुरू में ही एक बात कही गई थी कि इनकी एंटीबॉडीज, ये जो हमारी नई वैक्सीन्स हैं, इनकी एंटीबॉडीज कब तक कारगर रहती हैं। तो 10 महीने से ज्यादा का सामने नहीं आया था, ये कभी भी डेटा सामने नहीं आया। हमेशा बोला गया 6 से 8 महीने तक एंटीबॉडीज रहती हैं। तो ये एक बहुत ही अहम सवाल है कि इनको बूस्टर डोज लगी। इनफैक्ट अभी तो WHO ने भी कह दिया है कि बूस्टर डोज लगने से प्रोटेक्शन बढ़ती है, और खास करके हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इनको लगना जरूरी है। अभी तक सरकार ने ये लिया नहीं है, जबकि जो निर्णय लेना जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में 16 करोड़ डोजेज अभी भी राज्यों के पास हैं। आज की डेट में अगर देखा जाए तो कल ही शुक्रवार को एक जो पार्लियामेंट क्वेश्चन का रिप्लाई दिया है सरकार ने, उसके हिसाब से 16 करोड़ जो डोजेज सरकारों के पास है, राज्य सरकारों पे सबसे ज्यादा डोज जो है वो वेस्ट बंगाल के पास है, फिर महाराष्ट्र, यूपी और बिहार है जिनके पास सबसे ज्यादा डोजेस है। यानी पर्याप्त मात्रा में भारत के पास डोजेस है, और हम लोग अभी एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है, यानी वैक्सीन सप्लाई में कोई कमी नहीं है। तो बूस्टर डोज एक एक ऑलमोस्ट एक रिक्वायरमेंट है जो सरकार को एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा। वो अभी ले, जब एक नया वेरिएंट आया है, तो मेरी नजर में बहुत ही ज्यादा एक वाइटल सवाल है। और किस तरीके से ये करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, तो ये एक बड़ा काम होगा कि उनको, उन हेल्थ केयर वर्कर्स को फिर से बुलाना हेल्थ केयर सेंटर्स में, ये
बिल्कुल
एक बड़ा काम है। दूसरा
बिल्कुल
आपका सवाल रहा कि
बच्चों
बच्चों
का
की
टीका।
वैक्सीन, सबसे बड़ी जो समस्या सरकार के सामने ये है कि उनका ये मानना है कि किसी भी देश ने बहुत छोटे बच्चों, यानी 12 साल से भी नीचे के बच्चों का टीकाकरण पूर्णतः शुरू नहीं किया है। जबकि अगर आप देखें तो बूस्टर डोजेस भी US में शुरू हो गई हैं, और छोटे बच्चों की भी वैक्सीन शुरू हो गई हैं। तो सरकार की ये रुख रहा है, जबकि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी ने कहा है कि इसके ऊपर जब तक पूरा साइंटिफिक डेटा आ नहीं जाता, जो हमारे जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, ये एक पूरी तरीके से साइंटिफिक कम्युनिटी से एक ले नहीं लेते राय पूरी तरीके से, हम ये डिसीजन नहीं लेंगे। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जाइडस की वैक्सीन को मिल चुकी है, जो कि 12 से 18, मतलब 12 से ऊपर के लोगों में, यानी कि 12 से 18 साल के हमारे बच्चों को भी दी जा सकती है, वो दे चुके हैं। लेकिन जाइडस की जो वैक्सीन है जाइकोव डी, उसके अंदर एक स्पेशल सिरिंज यूज होती है, जिसको यूज करने के लिए हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो देते हैं वैक्सीनेटर्स, जो वैक्सीन देते हैं, उनको ट्रेन किया जा रहा है।
जी
वो ट्रेनिंग 1-1.5 महीने से पूरी हो रही है, और ये 7 राज्य हैं जिसके अंदर शुरू होगी। लेकिन वो भी अभी तक ये नहीं बताया गया है कि क्या 12 से 18 साल के बच्चों को भी दी जाएगी। ये सरकार किसी स्तर पे इसको थोड़ा रिस्की डिसीजन मान रही है, और
बिल्कुल
ये सोच रही है कि ये जो जब तक की साइंटिफिक कम्युनिटी भारत की पूरी तरीके से नहीं डिसीजन ले लेती, ये सरकार अपने ऊपर ना लेके पूरा
जी
साइंटिफिक तरीके से इसके ऊपर निर्णय लेना चाहती है।
जी फिलहाल तो ओमिक्रॉन को समझने के लिए लगातार कई स्टडी जारी हैं। ऐसे में तब तक सरकार की सुने लोग और लापरवाही ना बरतें तो बेहतर। निधि शर्मा जी, हमसे बात करने के लिए और इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।